नमस्कार भारत, 27 अप्रैल शुक्रवार। मैं हूं आदर्श राठौर। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन के बीच ऐतिहासिक मुलाकात। नई दिल्ली से कर्नाटक के हुबली जा रहे राहुल गांधी के विमान में तकनीकी खराबी, कांग्रेस ने जताया गड़बड़ी का शक।
श्री राहुल गांधी एंड अदर पैसेंजर्स लैंडेड सेफली एंड ए सीरियस एक्सीडेंट वाज अवर्टेड। ए फॉर्मल कंप्लेंट हैज बीन सबमिटेड टू डायरेक्टर।
अपनी चौथी चीन यात्रा पर आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जानेंगे कैसे अलग है ये मुलाकात। होंगी खबरें और भी, अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले सुनेंगे विश्व समाचार।
विश्व समाचार सुनिए सर्वप्रिया सांगवान से। कई दिन से जिसकी बात हो रही थी, आखिरकार वो मुलाकात आज हुई। आज शुक्रवार की सुबह उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन के बीच ऐतिहासिक वार्ता शुरू हुई है, जिसमें उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम रोकने को लेकर दिए गए संकेतों पर भी चर्चा होगी। 1953 में कोरियाई युद्ध खत्म होने के बाद पहली बार किसी उत्तर कोरिया के नेता ने दक्षिण कोरिया की जमीन पर कदम रखा है। मुलाकात की जगह दक्षिण कोरिया का सीमावर्ती गांव पनमुनजोम है। किम जोंग उन कार से यहां पहुंचे और बॉर्डर पार करते हुए पैदल ही वार्ता स्थल की ओर बढ़े। अमेरिकी कॉमेडियन बिल कॉस्बी को यौन उत्पीड़न के 3 मामलों में दोषी पाया गया है। 80 साल के अभिनेता पर 2014 में पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी एंड्रिया कॉन्स्टेंट को नशीली दवाई देने और यौन शोषण करने का मुकदमा चल रहा था। पिछले 5 दशकों में करीब 60 महिलाएं एमी अवार्ड जीत चुके कॉस्बी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा चुकी हैं। उधर कॉस्बी के वकील टॉम मेजूरू ने कहा है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई और वे मानते हैं कि कॉस्बी बेकसूर है और फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की योजना बना रहे हैं। कॉस्बी अमरीकी प्राइम टाइम टीवी के पहले प्रमुख ब्लैक अभिनेता रहे हैं। उन्हें 1980 के दशक की टीवी सीरीज द कॉस्बी शो के लिए पहचाना जाता है। सरकारी वकील केविन स्टील ने फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की।
What was revealed through this investigation was a man who had spent decades.
इस जांच के बाद पता चला है कि एक व्यक्ति है जिसने दशकों तक महिलाओं को शिकार बनाया, उन्हें नशा देकर उनका यौन उत्पीड़न किया और बहुत दिनों तक इस अंजाम से बचने की कोशिशें की। अपनी पहचान, अपने पैसे और अपने लोगों के नेटवर्क से अपने अपराध छुपाता रहा। सरकारी वकील केविन स्टील के शब्द। अमेरिका 2015 का ईरान परमाणु समझौता तोड़ने की बात कर रहा है। अमेरिका के दौरा करके लौटे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने को लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इस समझौते को बरकरार रखने की कोशिश नहीं करेंगे। इस मुद्दे पर कई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। रूस ने भी इस समझौते के टूटने की आशंका पर चिंता जताई है। रूस की विदेश मंत्री मारिया जाखारोवा का कहना है कि इस समझौते को बदलने या खत्म करने की गुंजाइश ही नहीं है। वहीं नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग का कहना है कि नाटो अलायंस ने इस समझौते का स्वागत किया था क्योंकि इसकी वजह से ईरान ने परमाणु कार्यक्रम बंद किए, लेकिन ईरान की कुछ गतिविधियां हैं जिन्हें रोकने की जरूरत है, लेकिन उसके लिए सिर्फ ये समझौता काफी नहीं है। एक चिंता यह भी जताई जा रही थी कि अमेरिका के ईरान समझौते से हटने का असर अमेरिका उत्तर कोरिया की बातचीत पर भी पड़ सकता है, लेकिन अमेरिका के रक्षा सचिव जेम्स मेटिस को लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फेक न्यूज को लेकर यूरोपियन कमीशन ने कमर कस ली है। कमीशन ने फेसबुक और दूसरे ऐसे कंपनियों को चेतावनी दी है कि वो अगले 6 महीने में फेक न्यूज से निपटने का रास्ता खोजें या फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। यूरोपियन कमीशन यूरोपीय संघ की ही संस्था है जो इसके लिए कानून प्रस्तावित करती है और इसके फैसलों को लागू करवाती है। इन ऑनलाइन कंपनियों को कहा गया है कि वे एक कोड ऑफ प्रैक्टिस लेकर आएं जिसमें किसी स्पॉन्सर्ड कंटेंट को पहचाना जा सके, किसी फेक अकाउंट को जल्दी से पहचान कर उसे बंद किया जाए और स्वतंत्र तौर पर तथ्यों को जांचने वाली संस्थाओं का भी सहयोग करे। यूरोपीय संघ के डिजिटल कमिश्नर मारिया गैब्रियल ने कहा कि संघ भी फेक न्यूज से लड़ने में फैक्ट चेकर्स की मदद करेगा।
The spread of deliberate disinformation. Fake news.
जो गलत जानकारियां या फेक न्यूज फैलाई जा रही है ताकि लोगों को बहकाया जा सके, शक और मतभेद पैदा किया जा सके, और हमारे समाज और लोकतंत्र के लिए ये सबसे बड़ा खतरा है। और जब ये कोशिशें बाहरी ताकतों की वजह से होती हैं तो हमारी सुरक्षा पर भी गंभीर असर डाल सकती हैं। तो जब बात ऑनलाइन फेक न्यूज की आती है तो अब हम युद्ध में हैं और इस युद्ध में बातचीत नहीं होगी। यूरोपीय संघ की डिजिटल कमिश्नर मारिया गैब्रियल के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। स्पेन में हजारों लोग सड़कों पर कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल स्पेन के कोर्ट ने 5 लोगों को यौन उत्पीड़न के जुर्म में 9-9 साल की सजा सुनाई है और लोगों को लगता है कि ये सजा काफी नहीं है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में स्वागत है आपका। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव सुन रहे हैं। मैं हूं आदर्श राठौर। सबसे पहले वो खबर जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जेई इन के बीच पनमुनजोम में मुलाकात हुई। दोनों देशों के शीर्ष नेता भारतीय समय के अनुसार सुबह 6 बजे मिले। यहां पर वो विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच इस तरह की वार्ता एक दशक के बाद हो रही है, इसलिए पूरी दुनिया में खासा उत्साह देखा जा रहा है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन जब सियोल में राष्ट्रपति निवास से इस मुलाकात के लिए निकले तो उनके समर्थकों ने उनका इस तरह से अभिनंदन किया। वहीं उत्तर कोरिया के मीडिया का कहना है कि किम जोंग उन खुले दिल से सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बहरहाल इस वक्त पनमुनजोम में क्या चल रहा है, क्या कार्यक्रम है दोनों नेताओं का, किन किन मुद्दों पर बातचीत होगी, जानकारी देने के लिए स्टूडियो में मौजूद है मानसी दास।
उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन से मुलाकात करने के लिए दक्षिण कोरिया पहुंच गए हैं। वो पहले उत्तर कोरियाई नेता बन गए हैं जिन्होंने मुलाकात के लिए सैन्य रेखा पार करके दक्षिण कोरिया की जमीन पर कदम रखा है। दोनों पड़ोसी मुल्क हैं और दोनों के बीच साल 1953 में हुए कोरियाई युद्ध के बीच एक लकीर खींची गई थी जिसे पहली बार इन्होंने पार किया है। किम जोंग उन यहाँ कार से पहुंचे और बॉर्डर पार करते हुए वो पनमुनजोम में पहुंचे। पैदल ही वो वार्ता स्थल की ओर बढ़ गए हैं। यहाँ पर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन ने उनका स्वागत किया है। पनमुनजोम ये वही जगह है जहाँ 5 महीने पहले उत्तर कोरिया के सैनिकों ने देश छोड़कर भाग रहे एक सैनिक पर गोलियां चलाई थी। दोनों के बीच इस तरह का ये तीसरा सम्मेलन है। इससे पहले 2000 और 2007 में दोनों कोरिया के शीर्ष नेताओं के बीच ऐसे सम्मेलन हो चुके हैं।
जी मानसी, दोनों नेताओं के बीच जो चर्चा होने वाली है, जो वार्ता होने वाली है, उसके अहम मुद्दे क्या होंगे?
दोनों कोरियाई नेता जो हैं वो प्रायद्वीप में शांति लाने का रास्ता तलाशने की कोशिश करेंगे और साथ ही जो 1950 और 53 के बीच जो कोरियाई युद्ध लड़ा गया था उसको औपचारिक रूप से ख़त्म करने पर भी ये दोनों चर्चा कर सकते हैं। बैठक में कई आर्थिक और सामाजिक विषयों पर भी चर्चा हो सकती है। बताया ये जा रहा है कि दोनों के बीच जो औपचारिक तौर पर बातचीत शुरू होगी वो भारतीय समयानुसार 7:30 बजे सवेरे शुरू होगी और वार्ता के पहले सत्र के बाद दोनों नेता अलग अलग लंच करेंगे। दोपहर के बाद मून जे इन और किम जोंग उन शांति और समृद्धि के प्रतीक के रूप में एक चीड़ का पेड़ लगाएंगे और इसके लिए दोनों देशों से लाई गई मिट्टी और पानी का इस्तेमाल करेंगे। पेड़ लगाने के बाद वह अगले दौर की बातचीत के लिए आगे बढ़ेंगे। समझौतों पर हस्ताक्षर होगा जिसके साथ ही सम्मेलन खत्म होगा और इससे पहले रात्रि भोज होगा जिससे पहले दोनों नेता साझा बयान जारी करेंगे। रात्रि भोज का जो आयोजन किया गया है वो दक्षिण कोरिया ने किया है।
बहुत बहुत शुक्रिया मानसी। तो इस मुलाकात की आज से 6 महीने पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी और पूरी दुनिया की निगाहें इस मुलाकात पर टिकी हुई हैं। अमेरिका से बीबीसी संवाददाता, न्यूयॉर्क से इरम अब्बासी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। इरम, आपसे जानना चाहेंगे अमेरिका में किस तरह से देखा जा रहा है इस बड़ी घटना को, इस बड़ी मुलाकात को?
जी, जैसा कि आपने कहा कि पूरी दुनिया की नजरें इस मुलाकात पे लगी हुई हैं क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं की जा कर सकता था, ये उम्मीद नहीं की जा रही थी कुछ महीने पहले ही कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के लीडर्स जो है इस तरह से मुलाकात करेंगे और एक पीस समिट जो इसको कहा जा रहा है उसकी तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि जब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, जब से दोनों कोरिया अलहदा हुए हैं, हालात दोनों के बीच बड़े ही खराब रहे हैं। ये पहले नॉर्थ कोरियन लीडर हैं जिन्होंने डिमार्केशन लाइन, जो वो लकीर जो इन दोनों को अलहदा करती है, वहां पर कदम रखा है। गो कि हम ये भी जानते हैं कि 2000 से लेके 2007 तक नॉर्थ कोरियन और साउथ कोरियन लीडर्स मिलते रहे हैं, एग्रीमेंट्स भी हुए हैं, मुहिदे भी हुए हैं, लेकिन उन पर कोई प्रैक्टिकली कोई अमल नहीं हुआ, कोई उसका कोई फायदा नहीं निकला। अब ये उम्मीद की जा रही है कि जो 36-year-old 36 साल लीडर है नॉर्थ कोरिया के, वो कितने सीरियस होंगे इस बात पर कि नॉर्थ कोरिया जो है वो अपने न्यूक्लियर एम्बिशंस जो है, अपने न्यूक्लियर हथियारों का जो अजायम है उनको कम करने के लिए कितना आमादा होता है।
साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जून में एक मुलाकात प्रस्तावित है किम जोंग उन और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में, उसे लेकर कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो अनिश्चितता है उसे लेकर, ट्रंप का ऐसा बयान सामने आया है।
जी, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि फ्रांसीसी प्रेसिडेंट जो है फ्रांस के वो यहाँ पर आए थे, तो वहाँ उस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐलान किया कि हो सकता है कि वो जून में जो है नॉर्थ कोरियन लीडर से मिले। उससे पहले हम ये भी जानते हैं कि नॉर्थ कोरियन लीडर और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो आपस में एक दूसरे को, प्रेसिडेंट ट्रंप ट्विटर यूज करके धमकी देते रहे हैं कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन ज्यादा बड़े हैं नॉर्थ कोरिया से, दोनों आपस में लड़ते रहे हैं, लेकिन अब देखना है कि मुलाकात होती है या नहीं।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया, इरम अब्बासी बता रही थी। और खास तौर पे हमें ये देखना होगा क्योंकि इस मुलाकात से राष्ट्रपति ट्रंप और किम जोंग उन के बीच मुलाकात का रास्ता भी खुल सकता है। चूंकि इस घटना पर पूरी दुनिया की नजर है, भारत भी इससे अछूता क्या भारत भी इससे अछूता रह पाएगा? हमारी सहयोगी शैली भट्ट ने बात की जेएनयू में कोरियन स्टडीज के एसोसिएट प्रोफेसर संदीप मिश्रा से और पूछा कि भारत इन दोनों नेताओं की मुलाकात से किस तरह प्रभावित हो रहा है।
मुझे लगता है कि इंडिया को कोई सीधा उस तरह से फर्क तो नहीं पड़ता है जो भी ये मीटिंग हो या ना हो, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात है कि इंडिया एक राइजिंग कंट्री है, एशिया पैसिफिक में हमारा इकोनॉमिक और सिक्योरिटी स्टेचर बढ़ रहा है, रोल बढ़ रहा है, और इसके लिए हमको एशिया पैसिफिक एक पीसफुल रहे तो ज्यादा अच्छा होगा। ईस्ट एशिया में या पूरे एशिया पैसिफिक में नॉर्थ कोरियन न्यूक्लियर और मिसाइल को लेकर कोई कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति आती है और उससे जो है कोई डिस्टेबिलाइजेशन होता है, वो इंडिया को एडवर्सली इफेक्ट करेगा। इंडिया चाहेगा कि स्टेबिलिटी बना रहे और इस तरह की बातचीत, इस तरह के जो समिट मीटिंग्स हैं, इस तरह के जो रीच आउट है सब तरफ से, वो एक तरह से कंड्यूसिव माहौल देता है कि इंडिया उसको वो करे। और दूसरी बात इंडिया का ये है कि बहुत दिनों से लगातार इंडिया का एक बड़ा कंसिस्टेंट पोजीशन रहा है कि नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर और मिसाइल इशू जो भी है, इसको बातचीत के और कूटनीतिक रास्ते के द्वारा हल किया जाना चाहिए। बीच में अभी स्थिति थोड़ी सी गंभीर हो गई थी, अमेरिका और नॉर्थ कोरिया दोनों एक दूसरे को धमका रहे थे और बहुत ही आक्रामक बातें कहे जा रहे थे, तो ऐसी स्थिति में पुनः बातचीत और कूटनीति को एक मौका दिया जाना, एक तरह से इंडिया जो सालों से दशकों से जिस नीति की वकालत करता रहा है, उस नीति को एक तरह से उसके सब लोग लौट के आए हैं और इंडिया के लिए एक तरह का ये मोरल विक्ट्री, एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री ये भी मानी जा सकती है।
जेएनयू में कोरियन स्टडीज के एसोसिएट प्रोफेसर संदीप कुमार मिश्रा बता रहे थे कि भारत किस तरह से इन दोनों नेताओं की मुलाकात से प्रभावित होगा। अब रुख करते हैं भारत की ही एक खबर का। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की दिल्ली से कर्नाटक के हुबली की हवाई यात्रा के दौरान विमान में तकनीकी गड़बड़ी सामने आने की खबर है। वो चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने के लिए कर्नाटक जा रहे थे। कांग्रेस ने इस तकनीकी खामी के पीछे साजिश का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा,
श्री राहुल गांधी एंड अदर पैसेंजर्स लैंडेड सेफली एंड ए सीरियस एक्सीडेंट वाज अवर्टेड, ए फॉर्मल कंप्लेंट हैज बीन।
रणदीप सिंह सुरजेवाला बता रहे थे कि किस तरह से एक हादसा टला, जो भी लोग उस विमान में सवार थे वे हादसे से बार बार बचे। उन्होंने ये भी बताया कि एक शिकायत दी गई है पुलिस को। क्या है ये मामला, विस्तार से जानने के लिए मैंने बात की बेंगलुरु में मौजूद हमारे सहयोगी इमरान कुरैशी से।
जानकारी अभी तक ये मिली है कि कल सुबह जब राहुल गांधी दिल्ली से हुबली में लैंड करने वाले थे एक स्पेशल फ्लाइट से, तो करीब 11:45 उनका प्लेन जब उतरना था हुबली के एयरपोर्ट पे, तो अचानक प्लेन ऊंचाई से गिरने लगा और बाएं तरफ झुकने लगा, तो इसके बाद वो बुरी तरह से हिलने भी लग गया। पुलिस को जो शिकायत की गई है उसके अनुसार अंदर कुछ आवाजें भी आना शुरू हो गई थी प्लेन के अंदर से, ऑटो पायलट भी काम नहीं कर रहा था। पायलट ने करीब 3 वक्त एयरपोर्ट के चक्कर लगाते गए और उसके बाद 4th वक्त प्लेन को वहां जमीन पर लैंड कर सके एयरपोर्ट पे।
जी, इस संबंध में कुछ अधिकारियों की तरफ से कोई इस तरह की जानकारी सामने आई है कि ये घटना की वजह क्या हो सकती है?
जी, कोई जानकारी तो नहीं आई है, मगर डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो सामान्य तौर से जो जांच करती है वो तो करेगी ही, मगर वहां से कुछ खबर आ रही है कि ऑटो पायलट की तरफ से कुछ नई बात नहीं है, ऐसे हादसे होते रहते हैं और फिर भी वो जांच करेंगे।
राहुल गांधी के विमान में तकनीकी गड़बड़ी के बारे में जानकारी दे रहे थे हमारे सहयोगी इमरान कुरैशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच आज से 2 दिन की वार्ता शुरू हो रही है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4थी चीन यात्रा है। नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच पहले भी मुलाकात होती रही है, मगर हाल ही में चीन दौरे पर गई विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और उनके चीनी समकक्ष की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुलाकात का ऐलान किया गया था। आखिर ये मुलाकात इतनी खास क्यों है, मैंने यही सवाल किया वरिष्ठ पत्रकार सुहासिनी हैदर से।
ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी विजिट है जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं चीन की तरफ, लेकिन ये सबसे अलग है क्योंकि एक इससे एक इनफॉर्मल समिट बुलाया जा रहा है जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ज्यादातर एक दूसरे से ही मिलेंगे बगैर किसी एड्स के, बगैर ऑफिशियल्स के, सिर्फ उनके इंटरप्रेटर शायद उनके साथ होंगे। और ये दो दिन का जो वक्त इनको मिल रहा है, अब तक हमने जो देखा है ज्यादातर एक दो घंटे के लिए वो मिल पाए हैं, कभी कभार तो उतना भी नहीं। तो दूसरे मतलब विजिट के मुकाबले यहाँ पर इन दोनों को वक्त मिलेगा एक दूसरे से बात करने के लिए। भारत और चीन के बीच में जो संबंध है उनके उनका मतलब फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए। और मुझे लगता है कि यहाँ जो अलग है पहले से कि यहाँ एक अंडरस्टैंडिंग है दोनों तरफ से कि चीन और भारत के जो रिश्ते हैं, एक तो ये बहुत खराब हैं, पिछले कुछ सालों में इनमें बढ़ोतरी नहीं, इनफैक्ट टाइज इनके घटे हैं और इस पे ये कुछ करना चाहते हैं, इसको ये सुधारना चाहते हैं।
ये जो मुलाकात होगी तो इसमें कौन कौन से मुद्दे अहम हो सकते हैं, किन में ब्रेक थ्रू होने की कोई ऐसी संभावना है?
अभी तक जो ऑफिशियल्स हैं दोनों तरफ से, जो सलाहकार हैं, वो बहुत मतलब कोशिश यही कर रहे हैं कि इस विजिट को और इन टॉक्स को, इस बातचीत को ज्यादा एक्सपेक्टेशन से ना लाद दिया जाए। वो कहना चाह रहे हैं कि ये दो जो लीडर्स मिलेंगे इनका कोई आउटकम एक्सपेक्टेड नहीं है, इस बातचीत का कोई जॉइंट स्टेटमेंट भी अभी एक्सपेक्टेड नहीं है। और वो अब इतना कहना चाहते हैं कि जो बड़े बड़े मुद्दे हैं दोनों के बीच में, हालांकि जो इनको बुलाते इरिटेंट्स भारत और चीन के बारे में बीच में बहुत सारे हैं, आप देख लीजिए जो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप मेंबरशिप का मुद्दा है जिसमें चीन को ब्लॉक किया हुआ है, यूएन में टेरर डेजिग्नेशन, जो पाकिस्तान में टेररिस्ट है उनके डेजिग्नेशन को चीन ने ब्लॉक किया हुआ है, भारत ने ये तय कर दिया था पिछले साल कि वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भाग नहीं होगा और उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। तो ये दोनों के बीच में मुद्दे हैं जिन पे बातचीत तो जरूर होगी, लेकिन जो हमसे जो मतलब ऑफिशियल्स ने बात की है उन्होंने कहा है कि दोनों लीडर्स बड़े विषयों पर बात करना चाहते हैं। एक तो जैसे भारत और चीन के बीच में दो बहुत बड़े अहम विषय हैं, एक जो बाउंड्री का मुद्दा है जो बाउंड्री आज तक डिमार्केटेड नहीं है भारत और चीन के बीच में, दूसरा जो ट्रेड डेफिसिट है, जो ज्यादातर ट्रेड भारत और चीन के बीच में है, $100 बिलियन के करीब जो ट्रेड है उसमें ज्यादातर चीन के पक्ष में ये ट्रेड जाता है, तो वो चाहते हैं कि इस पे बात किया जाए, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम की जस्टिस केएम जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश को वापस लौटा दिया है। ये पहली बार है जब केंद्र सरकार ने कोलिजियम के भेजे नाम पर सहमति नहीं जताई है। विपक्ष ने केंद्र सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। इस बीच एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट की छवि के लिए एक संकट है? यही सवाल हमारे संवाददाता दिलनवाज पाशा ने कानूनी मामलों के जानकार फैजान मुस्तफा से पूछा।
जब कांग्रेस की सरकारें थी, के इंदिरा जी की सरकार थी पहले या राजीव गांधी की थी या नेहरू जी की थी, उस जमाने में सरकार अपॉइंट करती थी जजेस को और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो थे वो कंसल्ट करते थे चीफ जस्टिस से या और किसी जज से जिससे वो चाहे, लेकिन चलती ज्यादातर सरकार की थी। उसके बाद जब ये कोलिशन पॉलिटिक्स का इरा शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में जिसे जजेस केस 1 और 2 कहते हैं, उसमें ये कहा कि साहब जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस होंगे उसमें एक कोलिजियम होगा और उस कोलिजियम में सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और 4 जजेस होंगे और वो जो भी रिकमेंडेशन देंगे उसको सरकार को मानना पड़ेगा, और अगर वो सरकार ने एक बार वापस किया और दोबारा उन्होंने सेम रिकमेंडेशन की तो सरकार के पास कोई चॉइस नहीं होगी। अब ये सिचुएशन एक नई, आप ये कह सकते हैं कि कोलिजियम बनने के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार या तो कोलिजियम के फैसलों को पलट रही है या कोलिजियम के फैसलों में उन्हें जो कुछ अगर किसी पे रिजर्वेशन है तो उसका अपॉइंटमेंट डिले कर दे रहे हैं या उसे वापस कर दे रहे हैं। तो ये क्योंकि पहली बार इस तरीके की सिचुएशन कोलिजियम के आने के बाद सामने आई जिसमें किसी एक जज ने सरकार के खिलाफ फैसला दिया और उस फैसले पे सरकार कह रही है कि उस फैसले से इसका कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन जिसको भी जरा सी भी समझ होगी उसे ये बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि जस्टिस जोसेफ को इसलिए सुप्रीम कोर्ट नहीं लाया जा रहा क्योंकि उत्तराखंड में उन्होंने जो केंद्र में सरकार है उनके राष्ट्रपति शासन को निरस्त किया था। मैं समझता हूँ ये चीज देश की न्यायपालिका के लिए और अदलिया के लिए उनकी इंडिपेंडेंस पे और आजादी पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जा रहा है।
क्या आज सुप्रीम कोर्ट की स्थिति ऐसी हो गई है कि वहाँ पद और उस पद पर कौन व्यक्ति बैठा है ये फैसले को प्रभावित कर सके?
सारा खेल मैं कहता हूँ परसेप्शन का होता है, जुडिशरी के बारे में भी सरकार के बारे में भी। तो परसेप्शन अब ये हो गया कि सरकार शायद जुडिशरी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, तो ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है कुछ इस टाइप के जजेस चाहती है जो सरकार के फेवर में हो, और ये हर सरकार चाहती रही है। कोई ये ऐसा नहीं है कि इस सरकार को हम ब्लेम करते हैं और बाकी सरकारें बड़ी अच्छी थी इस मामले में, लेकिन ये कि आप इतना ज्यादा ब्लेटेंटली कोई चीज कर दें, जैसा आजकल के जमाने में अब हर चैनल पे ये डिस्कशन हो रहा है, तो सरकार की छवि को भी धक्का लग रहा है इससे, और सुप्रीम कोर्ट की तो छवि जो है वो बहुत ज्यादा इसमें बिगड़ जाएगी।
आप सुन रहे थे कानूनी मामलों के जानकार फैजान मुस्तफा को, और अब समय है अखबारों की समीक्षा का। सरुप्रिया सांगवान अखबारों के साथ मौजूद है, क्या कहती हैं दिल्ली से छपने वाले अखबारों की सुर्खियां?
आदर्श, जो पहली खबर है वो तो यही जो अभी हम फैजान मुस्तफा से सुन रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार एक बार फिर आमने सामने है। इसका कारण मैं बता देती हूँ कि सरकार ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस KM जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने की जो कॉलेजियम ने सिफारिश की थी उसे नहीं माना, फाइल लौटा दी, और तर्क दिया है कि उनको इसलिए सुप्रीम कोर्ट नहीं लाया जा सकता क्योंकि जहां से वो आते हैं यानी मूल रूप से केरल हाईकोर्ट से, वहां से एक और जज पहले ही सुप्रीम कोर्ट में है यानी कुरियन जोसेफ। अब टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस पे लिखा है कि ऐसे तो दिल्ली हाईकोर्ट से 25 जज सुप्रीम कोर्ट में है, बॉम्बे हाईकोर्ट से 3 है, अलाहाबाद से 2 है, और इसी रिपोर्ट पर दैनिक भास्कर ने हेडलाइन लिखी है कि उत्तराखंड में केंद्र का राष्ट्रपति शासन का फैसला पलटने वाले जस्टिस KM जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने से केंद्र का इनकार। तो हेडलाइन को यहीं से देखने की जरूरत है। और एक टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है जो ये बताते हैं कि कैसे कानून और योजना तो बनते हैं, लोग स्वागत करते हैं, खुश होते हैं, लेकिन कुछ वक्त बाद देखे तो पता चलता है कि अभी तो कुछ शुरू ही नहीं हुआ। रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट 2016 आया था जिसे रेरा भी कहते हैं, और 28 राज्यों में लागू किया जाना था इसे, लेकिन अभी एक साल बाद सिर्फ 3 में ही ये अब तक शुरू हो पाया है। और तीसरे एक खबर है कि एक बड़ा हादसा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में कल हुआ जिसमें 13 बच्चों की मौत हो गई, और एक स्कूल वैन में बच्चे थे और मानव रहित क्रॉसिंग पार करते हुए ट्रेन से उनकी टक्कर हो गई।
जी बहुत बहुत शुक्रिया सरुप्रिया। पूर्वी दिल्ली में एक नाबालिग बच्ची से कथित बलात्कार के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिल्ली में कैंडल मार्च किया। गुस्साई भीड़ ने विरोध में पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर थाने का घेराव भी किया। ये मामला कितना उलझा हुआ है, क्योंकि ये कथित बलात्कार का मामला है, इसको समझने की कोशिश की BBC संवाददाता विनीत खरे ने।
हम पूर्वी दिल्ली के उस इलाके में हैं जहां पर बच्ची का परिवार रहता है। उनके माँ बाप इस वक्त बात करने की स्थिति में नहीं है। हमारे साथ जो बच्ची के मामा हैं वो हैं। आइए उनसे जानते हैं कि एग्जैक्टली क्या घटना हुई और वो पुलिस की कार्रवाई पर उनका क्या कहना है।
तो वो घर से निकली थी चीज़ और मिल्क और जो है कुरकुरे लेने के लिए, ये सारी चीज़ें निकली थी लेने के लिए
यहीं पे।
अच्छा। और वहाँ से हम इन लोगों ने 18 तारीख को शिफ्ट किया था और 21 तारीख को ये हादसा हुआ है।
तो पता चला कि बच्ची मिसिंग है।
लगभग ये मान के चलिए कि एक घंटे के अंदर में जो इसका छोटा भाई है उसने बता दिया था।
अच्छा।
कि बच्ची पापा बच्ची घर पे नहीं आई है, दूध और चीज लेने के लिए नीचे गई थी।
हाँ।
और अभी तक आई नहीं है वो।
हाँ, हाँ।
तो जीजा जी ने उसको
ढूंढना शुरू,
फिर उसको फोन किया।
हाँ।
और बच्ची को जो ढूंढा गया है वो लोकेशन ट्रेसिंग से ढूंढा गया है।
अच्छा।
और जब बच्ची का फोन भी फेंक दिया,
फोन का लोकेशन जो है
फोन की लोकेशन से ढूंढा गया है।
अच्छा।
तो वही पुरानी जगह पे जहाँ से 18 तारीख के लोग इधर शिफ्ट किए थे वही पुरानी लोकेशन पाई गई। पुलिस ने मौलाने के ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा। क्यों नहीं लगा?
बच्ची को ढूंढने में कितना टाइम लगा?
बच्ची को ढूंढने में लगभग तो 36 हार लगे हैं। अभी तक मौलाने के ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा, सिर्फ एक नाबालिग बच्चे के ऊपर चार्ज लगाया गया है। तो मुझे पूरे के पूरे गैंग को जो है अरेस्ट करें और कम से कम हमारी बच्ची के लिए कम से कम फांसी दें उसको।
हम इस वक्त उत्तर प्रदेश का जो साहिबाबाद इलाका है वहाँ पर उस मदरसे में हैं जिसके बारे में आरोप है कि या जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ पर ये जो बच्ची है उसका बलात्कार हुआ। यहाँ से जो मौलाना हैं इस मदरसे के, उनको पुलिस पकड़ कर ले गई। आइए हम राबिया परवीन से बात करते हैं जो कि मौलाना गुलाम शाहिद की पत्नी हैं। पुलिस राबिया जी कब पकड़ कर ले गई है?
8 तारीख को, ये संडे के दिन ले गई, संडे के दिन हाथ पकड़े नमाज पढ़ रहे थे, वो नमाज पढ़ते पढ़ते 4 रिकात नमाज पढ़े, उन्हें पूछताछ भी नहीं करे सीधा ले गई वहाँ।
मौलाना साहब पर इस तरह के आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं?
क्योंकि उनको बदनाम करने के लिए, वो तो दुनिया की बातें दुनिया को सिखाते चलते फिरते इंसान को चला सुनाते हैं, आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, आप नमाज पढ़ो, आप बुराई छोड़ो, तो क्या वो ये रेप कर सकते हैं? क्या आप लोग को यकीन होगा कि वो ये रेप करे हैं?
आप सुन रहे थे बीबीसी संवाददाता विनीत खरे को। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 39 संदिग्ध माओवादियों को कथित मुठभेड़ में मारने के पुलिस के दावे के बाद गृह सचिव ने दावा किया था कि पूरे देश में माओवादी हिंसा पिछले साल भर से कम हुई है, लेकिन गढ़चिरौली मुठभेड़ और गृह सचिव के दावों से अलग आंकड़े बताते हैं कि माओवादियों के गढ़ कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में माओवादी हिंसा घटने के बजाय बढ़ गई है। रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
केंद्र सरकार भले देशभर में पिछले 3 सालों में माओवादी हिंसा में कमी का दावा कर रही हो, लेकिन इस हिंसा का केंद्र माने जाने वाले छत्तीसगढ़ में माओवादी हिंसा में मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यहां तक कि पिछले 5 सालों में सर्वाधिक मौतें 2017 में ही हुई हैं। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2015 में माओवादी हिंसा में 101 लोग मारे गए थे और 2016 में मौत का आंकड़ा 107 तक पहुंचा, लेकिन अगले साल यानी 2017 में छत्तीसगढ़ में माओवादी हिंसा में सर्वाधिक मौतें हुई और यह आंकड़ा 130 तक पहुंच गया। 2016 में सुरक्षा बलों के 38 जवान मारे गए थे, लेकिन अगले ही साल यानी 2017 में सुरक्षा बल के 60 जवानों को माओवादी हमलों में अपनी जान गंवानी पड़ी। छत्तीसगढ़ की माओवादी हिंसा में गहराते मौत के इन आंकड़ों को लेकर नक्सल ऑपरेशन के विशेष पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी के पास अपने तर्क हैं।
पिछले साल 2 बड़ी घटनाएं हुई, सीआरपीएफ के ऊपर 2 बार घात लगाकर हमला किया गया, इसलिए वो आंकड़ा बहुत बढ़ा, क्योंकि एक बुरकापाल में 25 और भेजी में 12 लोग, एक साथ ही 37 लोग हो गए थे। वो 2 घटनाओं को अगर आप हटा दें तो आंकड़े नॉर्मल श्रेणी में आते हैं। यदि पुलिस जंगलों में जाएगी, कोर एरिया में जाएगी और आमने सामने की लड़ाई होगी तो कुछ हमारे लोग घायल और शहीद होंगे।
अवस्थी का कहना है कि पुलिस के दबाव के कारण भी माओवादियों ने अधिक संख्या में लोगों की हत्याएं की हैं, लेकिन विधायक और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भूपेश बघेल का कहना है कि पिछले 15 सालों से सत्ता की कमान संभाल रही राज्य की भाजपा सरकार के कार्यकाल में माओवाद और बढ़ता चला गया है।
राष्ट्रीय स्तर पर 44 जिले में नक्सल मुक्त घोषित किया गया है, लेकिन दुर्भाग्य से बस्तर के एक भी जिला को इसमें शामिल नहीं किया गया है। नक्सल समस्या थी, वो विस्तार आते हुए बस्तर से बढ़कर अब मुख्यमंत्री के गृह जिला कवर्धा तक को नक्सल प्रभावित जिला शामिल किया गया है।
हालांकि माओवादी मामलों के विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार रुचिर गर्ग मौत के आंकड़ों से माओवादी आंदोलन को कमजोर या मजबूत ठहराए जाने के खिलाफ हैं।
इन इलाकों में स्थिति केवल लाशों से ये फैसला करने की नहीं है कि कौन कमजोर हुआ और कौन मजबूत हुआ, इसका एक पैमाना ये हो सकता है कि माओवादियों की सैन्य ताकत अभी कितनी है। सांगठनिक स्तर पर एक पैमाना हो सकता है कि माओवादियों की पॉलिट ब्यूरो है, एक सेंट्रल कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसकी कमिटीज हैं, ये किस तरह से फंक्शन कर रही हैं, क्या ये पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गई हैं। तीसरा मामला ये हो सकता है कि भाई उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है।
दूसरी ओर मानवाधिकार संगठन PUCL की छत्तीसगढ़ इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर लाखन सिंह मानते हैं कि माओवादी आंदोलन के कमजोर होने की घोषणा असल में चुनावी तैयारी है।
ये कुछ ऐसा चुनावी घोषणा है जो चुनाव आते आते सरकार पे दबाव है कि वे घोषणा करे कि ये सब खत्म हो रहा है, प्रगति हो रही है, विकास हो रहा है और माओवाद आतंकवाद खत्म हो रहा है।
विकास की प्राथमिकता जैसी बहसों के बीच फिलहाल तो छत्तीसगढ़ का एक बड़ा हिस्सा माओवादियों और सुरक्षा बलों की लड़ाई का केंद्र बना हुआ है और दोनों ही तरफ से हिंसा के आंकड़ों के गणित में जोड़ घटाव जारी है। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
हम कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं। विदा लेने से पहले बता दें कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन वार्ता के लिए दक्षिण कोरिया पहुंच गए हैं। इस खबर पर ताज़ा अपडेट के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं bbchindi.com पर। BBC हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला देवाशीष भट्टाचार्य ने, फेसबुक पर आप तक ये कार्यक्रम पहुंचाया मीना कोटवाल ने। शाम 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक जुड़े रहिए bbchindi.com के साथ। आदर्श राठौर को सभी सहयोगियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।